તારીખ 26/9/1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23.
વિશાળ બુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા ઓર જીતેન્દ્રિયતા, ઇતને ગુણ જિસ આત્મા મેં હો તત્વ પાને કે લીએ ઉત્તમ પાત્ર હૈ. તત્વ પાના મેને આત્મતત્વ કા અનુભવ હોના હૈ और अपने सुख शांति का, आत्मिक सुख शांति का अनुभव होना अंतर में यही तत्व पाने की बात है. तत्व पाने के विषय में ऐसा पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए कि ये विद्वानों का विषय है, पंडितों का विषय है, सिर्फ उन्हीं लोगों का ये कार्य है, हम लोगों का एक कार्य, ऐसा पूर्वग्रह नहीं होता. तत्व पाने का मतलब ये इतना है, अपने आत्म तत्व में है, हमारे आत्मिक सुख और आत्मिक शांति हमको प्राप्त हुए, यही तत्व पाना है. और ये सभी जीवों का प्रयोजन है. किसी देश के वासी हो, अरे चिरेंज हो, प्राणी मात्र का ही अभिप्राय है कि हमें सुख हो और हमें दुख नहीं हो. जो तत्वज्ञान के क्षेत्र से अपरिचित लोग हैं, उन लोगों का कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, ऐसी गुंजन रहती है दिखने में आता है. हमने तो कोई शास्त्र इतने पढ़े नहीं, इस विषय में हमने कभी ज्यादा सोचा है. अभी तक तो हम लोग रहे, हमारे गृहस्थी में कारोबार में व्यस्त रहे, ये विषय तो थोड़ा कठिन दिखता है, अपरिचित दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं.
पढ़े लिखे तो
आजकल सब होते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़े नहीं है तो उन लोगों को ये लगता है कि ये ब्रांच है सारे, ये हमारे से कोई अलग ब्रांच है, हम इसके काबिल नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, ऐसा एक पूर्वग्रह हो जाता है. ये बात यहाँ नहीं है. प्राणी मात्र ऐसे कहने वाले हो या नहीं कहने वाले हो, प्राणी मात्र सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है. और सुख भी ऐसा चाहता है कि जो हमेशा है, कभी चला जाए, कभी दुख हो जाए, ऐसा भी चाहता है. और ऐसा सुख चाहते हैं कि हम हमारा सुख हमारे वश में हो, हमारे स्वाधीन हो, हमारे सुख के लिए हमें किसी से भिन्नता नहीं करनी पड़े, पराधीनता नहीं करनी पड़े, किसी से याचना नहीं करनी पड़े, ऐसा हमारा सुख और पूरा हो, अधूरा हो, ये भी कोई नहीं चाहता. ऐसा अभिप्राय सभी प्राणियों का सोचे बिना सोचे होता ही है. और ऐसा अभिप्राय इसलिए होता है कि वास्तव में आत्मा में ऐसा ही सुख है, इसलिए होता है. आत्मा में आत्मा का सुख स्वाधीन है, पराधीन नहीं, पूरा है, अधूरा नहीं. और उस सुख के लिए किसी से चिंता भी करनी नहीं पड़ती है. और ये शाश्वत भी है, कायम भी है, कभी आता है कभी चला जाता है. इसलिए तत्व पाने का यहाँ यही अभिप्राय है कि ये सुख की बात है, प्रयोजन के दृष्टिकोण से उसको सुख की बात कहने में आती है। तो इसके लिए कौन लायक है, पात्र मैंने लायक है। पात्र में चीज रखी जाती है, हीरा है वो हीरा के लायक दिल्ली में, सोना सोना के लायक, आभूषण के जो बॉक्स होते हैं इसमें रखते हैं, और घी तेल होते हैं तो उसके पात्र में रखते हैं, जैसी चीज है। तो आत्मिक सुख प्रकट करने लायक कौन है, सीधी बात ये पूछते, आत्मिक सुख कौन प्रकट कर सकता है, कि जिसकी बुद्धि विशाल हो। तो यहाँ पर एक तर्क ऐसा आता है कि हमारे इतना क्षेत्र नहीं है, हम इतना, हमारी बुद्धि लंबी चौड़ी इतनी नहीं है, कहीं की जो होती है बहुत बुद्धि वाले होते हैं, हम तो इतने बुद्धि वाले नहीं है, जो दूसरे लोगों की बुद्धि देखने में आती है। यहाँ इस प्रकार की बुद्धि का कहने का अभिप्राय भी नहीं है। विषाद बुद्धि मैंने, जिसकी संकुचित बुद्धि नहीं हो, नास्ति से ले तो बुद्धि में संकुचित पड़ा नहीं हो, नैरो माइंडेडनेस जिसको कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड आदमी चाहिए, ऐसा मनुष्य होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, जो सत्य को स्वीकार करने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं रखे, और सत्य को स्वीकार करने में कोई संकुचित पना नहीं रखे, ऐसी जिसकी बुद्धि हो। मैंने विशाल बुद्धि में ये बात आती है कि जैसे संप्रदाय बुद्धि है तो संकुचित बुद्धि है, भले कितना ही बड़ा संप्रदाय हो, लेकिन ये हमारे संप्रदाय में ऐसा होते, हमारे संप्रदाय में दूसरा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे गुरुदेव अपने हाथ से सुपरमैन बांटते थे, विराट जी को ये विकल्प कभी आता था, दिगंबरों में तो ऐसा नहीं होता, दिगंबर संप्रदाय में तो ऐसा पेपरमैन बांटना हमें बच्चे अपने बड़ों को बड़ों से देते। तो ये अपने दिगंबर एक फैक्ट है, एक जाति है, और उस जाति में कितनी रूढ़ी है, कितने रिवाज है, उससे बाहर नहीं जाए। अगर कोई इससे बाहर जाता है तो स्वीकृत नहीं होता है, इसका स्वीकार नहीं होता है, निषेध आ जाता है। वैसे कोई सुनी हुई बात हो, कोई अनसुनी बात हो, जैसे गुरुदेव के पास बहुत सी बात हमारे समाज में सुनी थी, लेकिन अप्रेरणा भी नहीं सुना था। तो ये जब ये बात आई कि आत्मा एक अपरिणामी तत्व है, मूल स्वरूप जो तत्व है, सुख से जो लबालब भरा हुआ है, ये तत्व तो अपरिणामी है, तो ये अनसुनी बात थी। तो हमारे स्वामी जी ने तो कभी नहीं कहा, हमारे गुरु ने ये बात कभी नहीं की, बात क्या आया, तो गुरुदेव ने ये बात नहीं की है, इसलिए हमने स्वीकार करते हैं विशालता का भाव करता है, इसका नाम विशाल है। ये थोड़ा बहुत ब्रॉड सेंस में बात किया है, जो विशाल बुद्धि का बात है उसका विशाल कहने में थोड़ा असर है। ऐसे बहुत सी बातें जो व्यवहारिक भी होती है, तात्विक भी होती है, सभी प्रकार की। तो विशाल बुद्धि में आदमी इतना उदार चित्त रहता है, ऐसा हम सीधा नकार नहीं करें, सोचे उदार करें, धैर्य से कुछ सोचे कि क्या ये सही है, ऐसा योग्य है या अयोग्य है, इसके गुण दोष को हम विचार करें, गुण दोष पर विचार ज्यादा करें, ऐसा एक विशाल बुद्धि में अवकाश रहता है, विशालता में अवकाश रहता है, संकुचितता में इस प्रकार का अवकाश। हालांकि गुरुदेव ने कहा था इस प्रेरणा में, जो हमने 280 गाथा के भावार्थ के प्रवचन पर आज से करीब 45 साल पहले तो गुरुदेव ने प्रवचन किए और कुछ बैंसरी ने जो लिख दिए और प्रकाशित हुए हैं उनमें से निकाल करके हमने रखे तो धर्म दृष्टि प्रकार दूसरा भाग नहीं हुआ है। देखिए गुरुदेव कहते हैं कि नहीं कहते हैं परिणाम नहीं। एक पैराग्राफ में 3 दफे अपरिणामी शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर निकाल करके दिया। गुरुदेव ने नहीं किया है तो बात नहीं है, हमारा ध्यान कभी नहीं गया और ध्यान नहीं गया उतने ही बात नहीं जो बात नहीं है और क्वचित ही कही गई है शास्त्र में, बार बार नहीं आती है, कहीं पर ही आती है, कोई एक जगह आती है, ऐसी कोई बात है तो उस बात पर और ज्यादा गौर से देखना चाहिए, ध्यान ज्यादा देना चाहिए। क्वचित ही बात आती है, एक ही जगह आती है तो कोई विशिष्ट लायक जीव के लिए ये बातें होनी चाहिए क्योंकि साधारण बात तो साधारण लोगों के लिए बार बार आएगी लेकिन कोई एक बात विशिष्ट बात होगी तो कोई एक विशिष्ट योग्यता वाले जीव के लिए होगी तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ऐसा देखना चाहिए। पर विशाल बुद्धि नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा, ये तो एक शास्त्र में नियम सार में आई है और शास्त्र में कहां है। जैसे कुजी पंचम भाव परिणति कारण शुद्ध पर्याय एक नियम सार के अलावा तो कहीं है नहीं, लेकिन इसका महत्व इसलिए ही है कि और कहीं जगह नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि कहने वालों के ज्ञान में वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान में होती है लेकिन कहते तभी कहते हैं क्वचित कहते हैं, इसका यही कारण है कि इसका बहुत महत्व है। ये कोई सस्ती बात हो जाए ऐसा हम नहीं चाहते, इसका मूल्य अपना अपने आप का जो मूल्य है इस विषय का वो तो मूल्य समझने के लिए उसका बार बार प्रयोग नहीं भी होता है।
वो शब्द अगर शास्त्र में नहीं मिले तो वो विशेष वो शब्द अगर शास्त्र में नहीं मिले ज्ञानी का ऐसा कोई वचन हो तो शास्त्र में कहीं मिले भी नहीं तो वो जरा
और ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो सत्पुरुष ने कहा वही स्वयं शास्त्र है। आगम तो स्वयं वहां से आत्मा में से निकली हुई चीज है, इनकी आत्मा में से निकली पहले तो ये करो ये ठीक प्रमाणिक है कि नहीं, अगर प्रमाणिक है तो जो बात हमने कभी नहीं सुनी ऐसी बात कही तो उसका कोई ज्यादा वजन चाहिए और ध्यान देना चाहिए, उसका महत्व भी सबसे अधिक समझना चाहिए। ये विशाल बुद्धि इस प्रकार की जो बुद्धि उसको विशाल और इससे विपरीत बुद्धि वो संकुचित बुद्धि है। ये मार्ग संकुचित बुद्धि मान्यता नहीं है, पात्रता मार्ग पाने के लिए पात्रता में ही विशाल बुद्धि आनी चाहिए, संकुचित बुद्धि नहीं है।
निशानी बहुत
चार बोल दिया है, बहुत बढ़िया 21 साल की
पोते दीक्षा धारण करी थी, मुझे पोते दीक्षा
धारण करी थी, छोड़ी थी। गणेश प्रसाद जी ने मधुबन में वो 13 साल की यात्रा में 2013 की यात्रा में जब आए थे हमने देखा तो मधुबन में ये मीटिंग हुई थी, वो प्रश्न किया था कि आपने तो प्रतिज्ञा ली थी तो मैं ऐसे इस संप्रदाय के जो साधु हैं साधु के देश में साधु की क्रिया में जो भी प्रतिज्ञाएं विधि विधान में होती वो ग्रहण की थी तो वो जब फर्स्ट टाइम कार में बैठकर गए संदे छोटे मोटी बात नहीं समझो यही समझो तो पैदल नहीं चले तो बिहार पैदल करते हैं दशा मिलते साधु या गोली में करते हैं कोई शक्त वो तो कार में गए थे और ये भी इतनी लंबी चौड़ी लग्जरियस कार लगे थे वहां प्रश्न किया था आपने प्रतिज्ञा भंग किया तो नहीं किया ये कहा कि प्रतिज्ञा ही नहीं थी। इस प्रकार का जो राग था असत्य को ग्रहण करके कहीं प्रकार के राग होते हैं उसको धर्म माना था धर्म समझा था मोक्ष मार्ग समझते थे क्योंकि लंबा थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं दिया था गुरुदेव ने तो इतना संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया था कि वो समझे ही नहीं थे मैंने जो समझ नहीं पाए थे वो क्या कहना चाहते हैं इतना संक्षेप में वो राग था जो दूसरा सत्य ग्रहण करने से छूट गया यानी वितरकता होने से छूट गया। वास्तव में तो वो प्रतिज्ञा नहीं थी एक प्रकार का राग था लेकिन जब सत्य सामने आया तो इसकी पकड़ नहीं रखी मूल मार्ग में तो मुझे ऐसा कोई अनुठी होती है बहुत सी आत्मस्थिरता होती है अंतर मुक्त में उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाया करता है ऐसा तो हुआ नहीं करता है या तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है पर उस स्थिरता का शुभोपयोग से तो खसे ही नहीं शुभोपयोग में आए नहीं थे बाद हो गई ये तो शुभोपयोग ही मोक्ष मार्ग है तो छूट गया शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानना छूट गया ऐसे विषाक्तता में बहुत सी बात
संकुचितता
का प्रतिपक्ष है विशालता
न्याय में ग्रहण करो तो विचार बंदी साचा न्याय में ग्रहण करो ये विचार बंदी
विचार की भूमिका में सत्य को ग्रहण करने का हमेशा हमेशा अवकाश रखना यही बुद्धि की विशालता है पर यही सरलता है यही मध्यस्थता ये तीन बातें तो करीब करीब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तीनों गुण जो है तीनों गुण आपस में साथ नहीं रहते तो मध्यस्थता भी ऐसी चीज है कि ऐसे पारलौकिक जो मध्यस्थता होती है उसको वितरकता इसको निश्चय मध्यता मध्यस्थता कहते हैं ज्ञाता दृष्टा लेकिन यहाँ की ये बात नहीं है तो पात्रता का विषय तो पात्रता में मध्यस्थता कौन सी है क्योंकि जगत में गुण और दोष दो प्रकार से परिणाम प्रतिपक्ष में हमेशा रहे तो जिसको गुण ग्रहण करना है तो गुण ग्रहण करने में अग्रसर हो यही मध्यस्थता है यही सरलता है। मध्यस्थता का मतलब ये नहीं कि ये भी सही है वो भी सही गुण वाला भी ठीक है दोष वाला भी ठीक जिनेन्द्र देव भी सही कहते हैं दूसरे भी संबंधी संप्रदाय में जो सिद्धांत शास्त्र है सही बात है ऐसा वितरागी गुरु भी सच्चा गुरु है रागी भी सच्चा है उसका नाम मध्यस्थता है मध्यस्थता का ये मतलब है कि सही बात को सही स्थान पर है इसका नाम
सही स्थान देना
सही स्थान देने में कि ये सही है ऐसा हमारे
हाँ
स्थापित करें हमारे परिणाम में स्थापित
करें जो असत्य है उसको निषेध करें ये मध्यस्थ
हो ही जाता है सत्य के स्थापन में असत्य का उत्थापन आए बिना रहता नहीं रह नहीं सकता होता ही जी जब मनुष्य मैंने साधारण मनुष्य लौकिक राग द्वेष में तो खड़ा ही है कि हमको ये पसंद है ये नहीं पसंद है ये इष्ट लगता है ये अनिष्ट लगता है तो अब इसका जो पल्ला है गुण दोष का दो पल्ला है उसका स्थान किस चीज ने लिया उतना देखें, तो उतने बात है कि ये गुण दोष के नजर से सभी बात को नाप लेते हैं, ये नापने का दृष्टिकोण हो जाता है, ये मध्यस्थता है, इसी का नाम मध्यस्थता है। गुण और दोष को एक सरखा नहीं तोले, मतलब जो परिणाम में एक तुल तो होता है, किसी जगह तुल जाता है और तुलना होता है, तुलना को बुद्धि काम करती है, ये सब प्रकार के जो परिणाम है उसमें गुण का पक्ष होए दोष का नहीं हो, इसका नाम और ये ग्रुप कार्यक्रम समझना चाहिए।
उपेक्षा भाव रहता है, जो विषय है विवाद का हो उसमें उपेक्षा भाव रखना, उस पर ध्यान नहीं देना, ये निषेध के खत्म जाता है,
समझ करके उपेक्षा, उसका अवगुण समझ करके उपेक्षा और गुण समझ करके अपेक्षा, तो ये तो पात्रता का विषय है, भूमिका तो पात्रता की है, पात्रता की भूमिका में वीतरागता तो नहीं हुई कि ज्ञाता दृष्टा हो गया, ये बात तो नहीं है, जब ये परिस्थिति तक पहुंचे ही नहीं तब तो उनको गुण दोष पर विवेक करना आवश्यक है। तो उपेक्षा करे किसकी, जिसमें अवगुण हो, अवगुण करके कारण से नुकसान हो तो उसकी उपेक्षा करे, तो अपेक्षा करे तो गुण के लिए आज करें, ये बात है।
विषय में तुलना नहीं करना,
तो सीधे ही उपेक्षा कर रहे हैं, देख ले विचार कर बात तो क्या है, फिर जो गुण और अवगुण का दृष्टिकोण का साफ होना चाहिए, अपने शुरू से बात की ये तत्व पाने का मतलब ही सुख पाने की बात है, शांति पाने की बात है, तो उसमें भी ये बात है कि गुण से उत्पन्न जो सुख ऐसा सुख होना चाहिए, दूषित परिणाम से उत्पन्न सुख नहीं है, मतलब दुख ही है, लेकिन क्रांति से बाहर से सुख दिखता है, ऐसा सुख या मतलब दुख वास्तविक ये हमें नहीं चाहिए, ये भी अभिप्राय है। उसके जो बाइफर्केशन करना है, उसकी खतावनी अलग अलग करनी है, उसमें यही अभिप्राय है कि हमको गुण दृष्टि से जो सुख उत्पन्न होता है ऐसा सुख हमें चाहिए, जो व्याकुल है, शांत है, स्वाधीन है और शाश्वत भी है, और ये तो सुख नहीं है, एक सुख का आभास है, उसमें तो दुख है, तो दुख तो चाहिए,
इसमें एक खंडन मन का प्रकार खड़ा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए।
खंडन मंडन तो तब होता है कि हम दूसरों को उस पर कोई दबाव डालें, प्रेस करें या दूसरे के लिए कोई आग्रह रखें, तब ये भूमिका चालू होती है खंडन मंडन वाले, लेकिन सही को सही जाने और जो सही नहीं है उसको सही नहीं जाने उसमें खंडन मंडन नहीं।
जैसे कोई साधन एक ही गुरु के शिष्य हैं, साधर्म है, तो साधर्म में कोई दूसरा साधर्म है, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा हो तो उसको अगर ये कहने जाएंगे तो ये खंडन मंडन
अपना अभिप्राय बता दें, उनकी स्वतंत्रता रखते हुए अपना अभिप्राय को स्पष्ट करिए, फिर उसको क्या करना हो उसकी जिम्मेवारी, तो फिर हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है,
वो खंड मंडन खाते नहीं जाता है,
अभिप्राय व्यक्त करने में कोई खंडन मंडन नहीं है, अभिप्राय जैसे अपने दृष्टांत मित्राग देव है, उसको आभूषण होना चाहिए या नहीं, तीर्थंकरों की मूर्तियां दो प्रकार की अभी मौजूद है, तो हमें विवेक करना है गुण दोष को दृष्टि से, कि जहाँ संपूर्ण त्याग होता है वहीं संपूर्ण ज्ञान होता है सर्वज्ञ, पर जहाँ सर्वज्ञ पड़ा होता है जहाँ संपूर्ण ज्ञान होता है वहाँ संपूर्ण त्याग होता ही है। क्योंकि राग तो स्वयं ज्ञानावरण को आमंत्रित करता है, राग से ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय चारों खड़े हो जाते हैं, तो घाती कर्म तो नष्ट कर दिए हैं तीर्थंकर देव ने, घाती कर्म तो नष्ट कर दिए, इसलिए राग नहीं है तो राग के निमित्त भी वहाँ नहीं हो सकते। और राग के निमित्त होते तो उनकी शोभा भी नहीं देते, वितराग वितराग का शोभा देने वाली चीज भी नहीं है। आभूषण शोभा देते हैं वो तो रागी लोग के अभिप्राय में मान्यता है, वितरागता में तो वो अभिप्राय नहीं है। और संसार में तो जीव बाह्य दृष्टि वाले ही करीब करीब होते हैं, तो बाह्य दृष्टि में तो बाह्य दिखाव से ही इंप्रेशन जो भी क्रिएट होगी उत्पन्न हो जाएगी, वो तो बाह्य दृष्टि से हो जाएगी। जैसे मैं इंटर इंसर्ट करके बैठ जाऊं पेंट शूट करके, तो हम इंप्रेशन ही ऐसी हो जाएगी कि क्या सुनेंगे उनसे। मैंने ये जो शून्यता है खाली जो जो ड्रेस में जो शून्यता है वो शून्यता भी ड्रेस बदलने से नहीं, आदमी भले ही वो खा चेहरा नहीं बदलता है, शून्यता में बाह्य दृष्टि में उतना इंप्रेशन तो क्रिएट हो ही जाता है, विकराग में परिपूर्ण विकराग है। तो ये बात तो गुण दोष के दृष्टिकोण से निश्चय करने की, खंडन मंडन के दृष्टिकोण से नहीं।
बहुत सूक्ष्म है ये जो भेद रेखा
रेखा जरा बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए गोपाल देव ने इस विषय में आत्मार्थियों को दूर रखा है, तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर की चीज है, तुम्हें अपने लिए निर्णय करो पसंद करो, या तुम्हारे में कुछ मोटी भी बुद्धि हो तो तुम हमारे सामने देख लो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाते हैं, मंदिर तो दोनों थे। तांबा कांठा से आते थे
वाला
में आते थे, दूसरा में आते थे गुलालवाड़ी में से एंट्री नहीं, वहाँ से तांबा कांठा से तो गुलालवाड़ी में से होकर दूसरा बुलवाड़ा में आया जाता है, दूसरा कॉर्नर वहाँ क्रॉस होता है। बीच में वो गुलालवाड़ी के बाहर मेन रोड पर तांबा कांठा पर ही स्वतंत्र मंदिर है, दर्शन करने को इधर आते थे। तो अगर वो नहीं करें तो भी बात तो साफ हो, तो वितरागता का दर्शन कहाँ करते थे, मैंने अपने प्रभु का दर्शन वो कहाँ करते थे, ये बात तो साफ हो गई कि नहीं। तो लंबा छोड़ा खंडन मंडन में नहीं जा रहे तो भी गुण दोष से बात खंडन करनी है, बात तो बहुत साफ हो, गुण दोष का विषय तो यहाँ होता है समझे, स्थूल विषय है, समझ में आए तुलना में तो जितनी शक्ति की तुलना होगी उसकी तुलना करने में तो संस्पर्शी तुलना तो करनी होगी,
ये मान्य व्यक्ति को है ना अभिप्राय अलग अलग पड़ता है, तो बोलता है गौ न पड़ी बैठे आदमी कोई नहीं अंजा मन मान को आवे जब मन देव को पड़े, ये मान्य व्यक्ति
मान्य कौन है, पर
और
બે અભિપ્રાય જયારે વિરુદ્ધ આવે છે ત્યારે પોતાની તુલનાત્મક બુદ્ધિ છે એની તુલના કરવી જ રહી કે શક્ય તુલના કરવા સુધી દ્રષ્ટિકોણ તો અપનાવે છે દોષ ના કારણે છે એનાથી તુલના શરૂ કરે જયારે બે વિરુદ્ધ અભિપ્રાય હોય ત્યારે તો કયા અભિપ્રાય થી ગુણ થાય અને કયા અભિપ્રાય થી દોષ થાય આટલી વિચાર શક્તિ તુલનાત્મક પણ પોતાની કેળવવી જોઈએ. એની પ્રમાણિકતા ને અપ્રમાણિકતા નક્કી થઈ ગઈ કે ભાઈ એક્સ છે એ પ્રમાણિક છે વાય છે એ પ્રમાણિક નથી એ તો નક્કી થઈ ગયું હોય તો પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણ થઈ
ગયું.
બે પ્રમાણિક પુરુષો જે વાત કરતા હોય તો પરસ્પર વિરુદ્ધતા હોય
નહીં
હોય નહીં એટલે કેવી રીતે નથી એની શોધ કરવી રહી નહીં હું ત્યાં વિશાળ બુદ્ધિ ની જરૂર છે મધ્યસ્થા નો સવાલ નથી ત્યાં એને માની લીધું કે બે પ્રમાણિક છે. હવે એપેરન્ટલી બહાર નો દેખાવ એવો છે કે બંને વિરુદ્ધતા દેખાય છે વાસ્તવમાં વિરુદ્ધ નથી તો એક એને વિચારવું ગતિ કરવાનો ક્યાં સવાલ છે પ્રમાણિક છે એમ ગતિ કરી જ લીધી છે ન કરવાનો ક્યાં પ્રશ્ન છે બંને પ્રમાણિક છે એમ ગતિ કરી જ લીધી છે કે બે પ્રમાણિક છે કુંકુદાચાર્ય પણ પ્રમાણિક છે અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય પણ પ્રમાણિક છે તો પછી તો ગતિ કરી જ લીધી કે બંને પ્રમાણિક છે એટલે એમાં કઈ હવે જે એમના વચનો છે એ વચનો પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાવીએ છીએ બંને પરોક્ષ છે તો કોઈ વચન ની અંદર મિસપ્રિન્ટ તો નથી મિસપ્રિન્ટ નથી તો વચન રચના ની અંદર કોઈ શબ્દ રહી જાય એવું છે એવું લાગે છે. પછી તો એને વિશાળ બુદ્ધિથી બધા પડતા એને તપાસવા પડે અને એનો તલસ્પર્શી નિર્ણય કરવો પડે કે આમાં બંને અવિરોધ ક્યાં છે કેવી રીતે છે કઈ અપેક્ષાથી અવિરોધ છે અને વિરોધ દેખાય છે તો એ કઈ દ્રષ્ટિએ વિરોધ દેખાય છે એનો નિર્ણય કરવો પડે એ વિશાળ બુદ્ધિનો વિષય છે.
બંનેમાં વિરોધ નથી આ નિર્ણય રાખીને
બીજી વ્યક્તિ જે સાંભળે પેલા ઉભા રહે એકે વાત આવે નહીં અંજામ
એની વાત જાણી લઈએ અને બંને ના ગુણ દોષ નો નિર્ણય કરે જાણી લઈને શું છે કે જાણતા પહેલા એને પૂર્વગ્રહ નક્કી ના કરે આ દોષિત હોવા એમ કરે તો અથવા મધ્યસ્થતા થઈ ગઈ વાત જાણ્યા પછી એના ગુણદોષ નો વિચાર કરે છે મધ્યસ્થ બુદ્ધિ છે જાણ્યા પહેલા એનો ગુણદોષ નક્કી કરી લઈએ કે પક્ષપાત કરી લઈએ પણ તે મધ્યસ્થતા નથી એમ થઈ તો પક્ષપાત છે આમ તો શું છે બીજી રીતે વાત સ્પષ્ટ કરીએ કે મધ્યસ્થતા અને પક્ષપાત બંને પ્રતિપક્ષમાં છે તેમ છતાં અહીંયા એવો એકાંત નથી અહીંયા ગુણનો પક્ષ છે એને પણ મધ્યસ્થા કહેવાય છે આમ વાત છે થોડી એટલે ગુણ દોષની વિચાર કરવાની તુલનાત્મક બુદ્ધિને અહીંયા મધ્યસ્થા કહી છે માત્ર પક્ષપાતને અહીંયા વિરુદ્ધતાને મધ્યસ્થા નથી કહી
આટલી વાત સ્પષ્ટ છે. આ સિદ્ધિ વાત છે, ડાયરેક્ટ આટલી વાત છે.
ન્યાયાધીશ
છે, બે કેસ ને સાંભળે છે, એ તો બધા થી અજાણ છે. અનનોન પાર્ટી આવે છે, એને કોઈ સગા સંબંધી એનો કેસ નથી લેવાનો હતો, કોઈ એના સગા સંબંધી હોય તો એનો કેસ એને સોંપાતો નથી, એને કેસ એને લેવાતો નથી. પોલિસી છે ન્યાય કરવા વાળાની, ભાઈ આ તો એના મામા થાય, કાકા થાય, દાદા થાય, દીકરો થાય, પણ એને કેસ જ આપવો નથી લેવાતો. આ તો નીતિ છે ન્યાયની. પણ જે હજાર માણસો છે એની તો ખબર નથી કે કોણ સાચો છે, કોણ ખોટો છે, કોણ ગુણવાન છે, કોણ દોષવાન છે. બંનેના જે રજૂઆત છે એને કુટુંબ કરવામાં આવે, બંનેની રજૂઆત એને સાંભળે છે અને ગુણ દોષ પર વિચાર કરે છે. વિરુદ્ધ પુરાવા તો મળી શકશે નહીં, બે માંથી એક જ પુરાવો મળી શકશે, અને પુરાવા પરથી સાચું ખોટું નક્કી થઈ શકશે. ત્યાં તો એમ કહી શકે કે ન્યાયાધીશે પક્ષપાત કર્યો, ત્યાં તો એમ કહી શકે ન્યાયાધીશે તો ન્યાય કર્યો છે, પક્ષપાત નથી કર્યો, એનું નામ મધ્યસ્થતા છે. દોષિતને દોષિત ઠરાવે એનું નામ મધ્યસ્થતા છે, અને નિર્દોષ છે ને નિર્દોષ ઠરાવે એનું નામ મધ્યસ્થતા છે.
ભલે નહીં ઓળખા નથી, લેકિન એક સત્પુરુષ છે, ઓક સંજ્ઞા સ્વીકારેલો છે, એટલું તેને ઓક સંજ્ઞામાં પણ આવવું જોઈએ ને કે એક સાઈડમાં સત્પુરુષ છે, બાકી બીજી સાઈડમાં પાછી ત્યાં છે, તો મારે કઈ બાજુ રહેવું?
બે સત્પુરુષ માં પરસ્પર વિરુદ્ધતા થતી નથી,
પછી નક્કી કરવાનો સમાજ આવે કે આમાંથી કોણ સત્પુરુષ છે, કોણ કઈ હતા. પેલા પછી બધા એને ક્યાં છે, વિધવાન તરીકે કે માન્ય તરીકે
લંબાવાની બહુ જરૂર છે. સરળતા સરળતાનું પ્રકરણ પણ વિશાળ છે આમ તો, પણ સામાન્ય રીતે અહીંયા વાત છે મુમુક્ષુની પાત્રતાનો વિષય છે. મુમુક્ષુને પાત્રતામાં સરળતા હોય છે તો એ પ્રકારની પોતાને માટે અને બીજાને માટે સરળતામાં બે જગ્યાએ વાત લાગુ પડે છે. એક પોતાને માટે સરળતા રાખવી, એક બીજાને માટે પણ સરળતા રાખે. તો પોતાને માર્ગ પ્રાપ્તિ માટે, ગુણ પ્રાપ્તિ માટે સરળ થવું છે, બીજો માર્ગ પ્રાપ્ત કરે એના માટે પણ સરળ છે. સરળતાની વાત પણ આટલી જ સરળ છે, સીધી આંટી ખૂટી વાળી નથી. મધ્યસ્થાની વાત થોડી આંટી ખૂટી વાળી થાય છે, સરળતાની વાત એટલી આંટી ખૂટી વાળી નથી. એ વાત પણ એટલી સરળ જ છે કે તારે સરળતાથી જો માર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી છે, ગુણની પ્રાપ્તિ કરવી છે, તો જીતે તો એવો અસરળ પ્રકૃતિ કા પ્રગટ પરિણામ. જો વાત હમને પક્કી કરી એમ છોડ નહીં શકતા, हमने निश्चय कर लिया हमारी समझ में एकदम ये बात निश्चित हो गई कि हम छोड़ नहीं सकते चाहे गलत हो। तो जो मध्यस्थ बुद्धि से जो बात गुण दोष से निश्चित हो जाती है तो सरलता से सत्का स्वीकार असत्का त्याग ऐसा होना ये सरलता है। मैंने मध्यस्थ बुद्धि जो निश्चित करती है सरलता उसको एक्सीक्यूट करती है
सीधी
बात एक डिसीशन का स्टेज है एक एग्जीक्यूशन का है निर्णय हो गया उसका अमल करो ये सरलता है सरलता से अपने लिए उसको भी मार्ग प्राप्ति में सरलता करो जैसे वो मार्ग प्राप्त उसको हुए ऐसे ही हम सब बात रखें हमारे हमारी ओर से कोई भी बाधा उनको मार्ग प्राप्ति में प्राप्ति उनको बाधा किसी को नहीं पड़ते हमारे कारण से ये सरलता है। पर हम मार्ग प्राप्त करें उसमें हमारे परिणाम में कोई ऐसी पकड़ नहीं रहे सरलता से हम उसको ऐसे परिणामों का त्याग कर दे रहे हैं कि जिससे हमें सत्य का आग्रह करने में सरल बात सरल हो जाए रास्ता सरल हो जाए। ये मनुष्यता में पात्रता के कारण ये बात है सरलता है और जितेंद्रियता जितेंद्रियता नीरज परिणाम को कहते हैं मुमुक्षु की भूमिका की बात है मुनिरा मुनिराज की कोई बात नहीं है न पंचम गुण स्थान वालों की बात है चतुर्थ गुण स्थान भी अविरत समय ज्ञान त्याग मार्ग नहीं भी होता या कोई व्रत नहीं होता कोई नियम नहीं होता मुमुक्षु तो इसके नीचे की कोटि में है इसके नीचे की कक्षा में है इस कक्षा में जितेंद्रियता कैसे आती है कि परिणाम निरस्त हो जाए सुख दुख का विषय समझ लेना हमारा सुख कहाँ है हमारा दुख कहाँ है। तो किसी भी उद्गल विषय में सुख तो है ही नहीं सुख नहीं है जहाँ सुख का अभाव है कोई अस्तित्व नहीं है सुख का वहाँ रस आने का सवाल नहीं है रस तो जहाँ आता है जहाँ सुख मालूम पड़ता है वहीं रस आता है स्वाभाविक बात है। तो उसी प्रकार समझदारी से तत्व दृष्टि से निश्चित करके निरस्ता हो जाती है उसको यहाँ जितेंद्रियता कहते हैं क्योंकि तीव्र रस के परिणाम में पंचेंद्रिय के विषयभूत और कषाय के तीव्र रस के परिणाम के साथ दर्शन भाव तीव्र होता है ये चारित्र मोह के रस के साथ दर्शन मोह के परिणमन का अभिनाम संबंध है। इसलिए दर्शन मोह जो मलिन करता है पात्रता को भी मलिन करता है तो पात्रता ठीक रखने में दर्शन मोह बंद होना यही पात्रता का लक्षण है। व्यवस्थित पद्धति से विचार करें तो सिस्टमेटिकली तो ये बात है कि दर्शन मोह बंद होना चाहिए पात्रता और जितेंद्रियता और दर्शन मोह को उसको कितना संबंध है कि जितेंद्रियता चारित्र मोह में जाती है तो चारित्र मोह के परिणाम में दर्शन मोह का संबंध कब लगता है और कब नहीं लगता है इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो लंबी चौड़ी बात नहीं करें या इतनी सूक्ष्मता में नहीं जा रहे तो भी एक रस का जो फैक्टर है उससे सीधा संबंध दर्शन मोह से होता है। इसलिए समय सार आदि सब ग्रंथों में ये बात ली जहां बंध का अधिकार चला कि राग महारस पूर्वक जो राग चलता है उसको हम बंध कहते हैं रागोद्गार महारस है मैंने चीकणे परिणाम नहीं होने चाहिए किसी भी खान पीन रहन सहन किसी भी परग्रह के संपर्क वाले परिणाम जितने भी हो पराश्रित उसमें राग की उसमें जो राग की चिकास है यही पात्रता का नुकसान करने का एक कारण है। रुखा राग तो रहेगा वितराग ने वितरागता उत्पन्न प्रकट नहीं होगी वहां तक तो राग रहेगा लेकिन राग की चिकास जो है वो घट सकती है वो कम हो सकती है और ये समझदारी से कम होनी चाहिए ये बड़ा नुकसान है। ये अगर कम हो जाती है तो उसको ज्ञान की तैतरीयता कहती है। तो इसलिए इस बात को यहाँ दिया है कि जिस मति ज्ञान में या ज्ञान में हमें सुख का निर्णय करना है, तत्व का निर्णय करना है, सच्चे सुख को पहचानना है, स्वभाव को पहचानना है, उसके लिए ज्ञान निर्मल चाहिए। निर्णय हो सके उस पैमाने में, उस अनुपात में कम से कम निर्मलता होनी चाहिए। तो उतनी जो निर्मलता है वो तीव्र रस वालों को कभी नहीं, जिसको जितने भी उदय भाव है, फिर उदय भाव तो व्यापारी को व्यापार के होते हैं, बहनों को अपने काम में होते हैं, और सभी राशि को सभों को होते हैं। तो जितने भी औदयिक भाव है उसमें रस की तीव्रता हो जाए तो ये ज्ञान को मलिन करता है, नशन को पैदा होता है। उसमें जो है ये तत्व का निर्णय नहीं होगा, सुख का निर्णय नहीं होगा, दुख सुख रूप आभासित हो जाएगा और वहां तो डूबना है, वहां तो तिरने का सवाल नहीं। चारित्र में जो रस तीव्र होता है उतना एंगल जरूर है,
उतना दृष्टिकोण की खातिर मुझे
सब जुड़ता है, बिना भाव रूप से आ जाता है। जो है अलग अलग, फिर भी दोनों का कोई एक स्टेज पर अविना भावी संबंध भी होता है। ऐसा जैसे व्यसन है, व्यसन वो चारित्र मुंह में जाता है, व्यसन है वो चारित्र मुंह में जाता है, चारित्र का दोष है, लेकिन दर्शन मुंह के साथ उसका संबंध रहता है, क्योंकि तीव्र रस बिना व्यसन नहीं होता। व्यसन में तीव्र रस होता ही है, चारित्र होगा परिणाम है, लेकिन रस तीव्र होने से दर्शन मुंह के साथ संबंध नहीं लिया। इसलिए कहते हैं कि सभी दृष्टिकोण सत्य व्यसन होते नहीं, सभी दृष्टिकोण क्या मोक्षों को भी नहीं होते, क्योंकि मोक्ष तो वो है कि जो सम्यक दृष्टि का अनुसरण करना है करता है, और अनुसरण करके सम्यक दृष्टि जिसको होना है होने वाला है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो उनको भी सत्य व्यसन नहीं है,
व्यसन तो एक उस प्रकार के भाव की परिणति हो जाती है, तो व्यसन रहता है
तो वो परिणति मुकद में तो नहीं हुई, तीव्र रस के कारण हुई है
वो, इसका तीव्र रस का फैक्टर आ जाता है,
तीव्र रस के बिना परिणति होती नहीं। परिणति कब होती है? बिना तीव्र रस परिणति हो ही नहीं सकते।
संतति जाति के संतति के संयोग लोग अतिग्रस्त हो जाता है, पंचेंद्रिका तो ऐसे
पंचम नहीं, इसलिए बोले ना कि जितने भी औदयिक भाव है व्यापार में व्यापारी को और रसे को बहनों को, ऐसा तो बोल दिया जो घर के काम करते हैं और जो दुकान के काम करते हैं, मनुष्य में तो दो ही काम है। तो जो भी जहां जिसका उदय भाव हो, उदय हो, वहां तीव्र रस नहीं होता। काम तो हर एक प्रकार के हो गए, व्यापार में सैकड़ों काम, सैकड़ों प्रकार के काम होते हैं। मैंने कई लोगों से माथा पच्चीसी करने का काम करता है, और ऐसे घर में भी ऐसे बहुत माथा पोड़ी तो बहुत है, तीव्र रस यहाँ भी होता है, वहां दर्शन अभिनाम भावी रूप से तीव्र हो जाता है, और ये ज्ञान को मलिन करता है, ये सुख दुख की पहचान नहीं करने देता, तत्व की पहचान नहीं होती। इस तत्व पाने में ये चारों बात ली है। अभी एक बात बहुत सुंदर लिखी है, अनंत जन्म मरण कर चुकने वाली इस आत्मा की करुणा वैसे अधिकारी को उत्पन्न होती है, और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है, लग सकता है। के अनंत जन्म मरण कर चुकने वाले हमारी आत्मा है, अपने प्रत्येक आत्मा जो भी है संसार में अनंत जन्म मरण कर चुकी है। ऐसा पिछले जन्म में एक बार ही मरे हैं, ऐसे अनंत जन्म मरण हो चुकी है और मरते वक्त भी बहुत दुख भोगा है प्राण छूटने में और जन्मों के वक्त भी उतना ही है। दोनों बहुत दुख का प्रसंग है और इस दुख का भोगी बार बार अब नहीं हो गए, ऐसी करुणा ऐसे दुख से मुक्त कराने का भाव, दुख से छुड़ाने का भाव को करुणा कहते हैं कि अब ये मेरी आत्मा को मुझे ये जन्म मरण का दुख में नहीं डालती है। ऐसी करुणा किसको आती है? इसको आती है जिसको विशाल बुद्धि मध्यस्थता सरलता और जितेंद्रियता की प्राप्ति हुई, ऐसे पात्र जीव को, ऐसे अधिकारी जीव को ऐसी करुणा आई है। मैंने ये चारों है इसका कोई एक सिग्निफिकेंस, एक सिम्टम है क्या? ये करुणा अपनी आत्मा की करुणा आई तो ऐसे अधिकारी को आएगी जिसको ये मध्यस्थता है, सरलता है, विकेंद्रियता है, तो बात तो चारों बात करके एक जगह ले आया, एक नया सिस्टम दिया कि अपनी आत्मा को जन्म मरण के दुख से, मैंने हर प्रकार के दुख से, जब जन्म नहीं होता तो जन्म के बाद सारे भव का दुख नहीं होगा, पीड़ा का, उलझन का, रोग का और कई प्रकार के संयोग का, अनिष्ट संयोग का, इष्ट वियोग का, अनेक प्रकार के दुख तो है संसार में। जब जन्म ही नहीं है तो जन्म के बाद आयु तक के दुख तो फिर खत्म हो गए, तो सभी प्रकार के दुख से छुड़ाने की अपनी आत्मा की करुणा है, वो करुणा कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई? जिसको सरलता मध्यस्थता जितेंद्रियता विशाल बुद्धि से पात्रता ही ऐसे अधिकारी जीव को ही होती है और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है, इसी को सर्व कर्म से मुक्त होने का यानी पूर्ण शुद्धि की अभिलाषा है। कर्म से मुक्त मैंने पूर्ण शुद्धि की अभिलाषा, मोक्ष पद की अभिलाषा, सिद्ध पद की अभिलाषा यानी पूर्ण सुख की अभिलाषा, ये बात है सुख के प्रयोजन की, पूर्ण सुख की अभिलाषा यही मोक्ष की अभिलाषा है। सच्चे सुख की, पूरे सुख की अभिलाषा उनको ही होती है, ऐसे अधिकारी को ही होती है, उसी को ही अधिकारी कहा जा सकता है, पात्र कहा जा सकता है और ऐसा पात्र जीव यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। पुरुषार्थ किसको प्रकट होता है कि पात्रता वाले को पुरुषार्थ होगा, पात्रता ही नहीं होगी तो पुरुषार्थ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये स्थिति ये तो ठाम ठाम इस ग्रंथ में
आगत जी चर्चा करी क्रम जो है ये निश्चित
क्रम के बिना ज्ञान की निर्मलता नहीं है
जी।
मट्टी जिसकी निर्मल नहीं है, मट्टी जिसकी मैली है, वो सुख दुख का क्या निर्णय करेगा? ये सुख तो पवित्र है, निर्दोष सुख है जी, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लोग पंद्रह साल की उम्र में, ये तो 21 साल 15 साल की उम्र में, ये गुण से उत्पन्न होने वाला सुख का निर्णय है, ये निर्णय जो है वो तो मति शुद्ध होगी तब होगा, निर्मल होगी तब, ये बिना पात्रता संभव नहीं है। आदर्श बोध के परिणत हुए बिना वो संभव नहीं है। वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ रूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। ये मुक्ति के पुरुषार्थ में पूर्ण शुद्धि के पुरुषार्थ में फिर ये जीव लग जाता है। लग जाता है मैंने अभी वो दूसरे कहीं नहीं लगता, इसका पुरुषार्थ और जगह नहीं लगता, यही कारण है इसका पुरुषार्थ लग जाता है।
गुजराती में योजा है सब चीज
योजा ही बराबर होगी, योजना पूर्वक जो जोड़ता है उसको योजाता है, योजा है योजना है उसके पास, पूर्ण शुद्धि की एक योजना हो गई, अब ये कार्यान्वित हो उसको योजा है जोड़ाए थे, पर योजना पूर्वक व्यवस्थित रूप से ऐसे जो भी मन में आवे वो कर ले, उसको पुरुषार्थ नहीं कहीं कहा जा रहा है, व्यवस्थित रूप से अपनी भूमिका के अनुरूप
आज चार भाव होगा तो योजना मन में आज चार भाव होगा तो योजना मन में आज चार भाव होगा योजना मन में
राजू भाई पर भी राज मायला तो सब टाड़ी पाड़ी बैठा रही थी पास में बेस को प्रश्न करवा पर प्रश्न जो वैराग तो देखा है आप भूमिका में आऊ नहीं होते गमे तक करके एवं आवेश का कोई विषय नहीं, आवेश में आदमी गमे तक आ छोड़े व्यवस्थित है अपनी भूमिका में क्या होता है, भूमिका अपने से आगे की भूमिका में आवेश से चले जाए ठीक नहीं पाएगा, एक सत्ता नहीं तो छोड़ना पड़ेगा सत्ता, और समझो कि कोई कषाय की मंदता के कारण अभी पर्यंत टिक गया तो भी इसका कोई आत्मिक लाभ तो है, आत्मिक लाभ तो कुछ है, काम तो जो होता है वो ढंग से होता है, व्यवहार में भी सब काम अपने ढंग से होते हैं, एक प्रोडक्ट मिलती है।